कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आ आगे तुम निर्भय होकर जाओ, ऐसा हो ना खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना, ऐसा हो न खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।
शांति, गुड इवनिंग। हम सभी ने बहुत सुंदर गीत सुना। क्या सुना गीत में हमने, क्या सुना गीत में सबने सुना? गीत ध्यान से बहुत सुंदर मैसेज था गीत में। क्या मैसेज था? कर्म करो, कर्म ऐसे करो कि पछताना ना पड़े। वेरी गुड, क्योंकि एक दिन तो सभी का हिसाब किताब होना है, और जो कर्म हम साथ लेकर के जाएंगे उसी के आधार पर हमारा आगे आने वाला जीवन निर्भर करता है। आज हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत के बारे में। क्या कर्म की कहानी कैसे चलती है? जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है ना? तो आज हम कर्म तक आए, उससे पहले हम एक छोटा सा पहले का रिकैप लेते हैं। हमने अपने को जाना, शिव बाबा को जाना, उनके साथ रिलेशन को पक्का किया, हमने मेडिटेशन से मिलने वाली अष्ट शक्तियों को भी जाना, और आज हमने क्या जाना, और कल हमने क्या जाना था? कल हमने पूरा टाइम साइकिल जाना था कि कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग आता है सृष्टि चक्र में। बार बार ये सृष्टि चक्र हर 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम। लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है अभी बेस्ट टाइम? अभी क्यों है, क्यों है अभी बेस्ट टाइम? अभी क्यों है? क्योंकि इसी समय पर बेस्ट इसलिए है, ये डायमंड युग है। ये क्यों है डायमंड युग? क्योंकि इसी समय पर मिलने का समय, बाबा से मिलने का समय निकट है। आत्मा को परमात्मा मिल गए, समय निकट भी नहीं है अब तो, परमात्मा भी आए हुए हैं, हम भी यही हैं, उनका परिचय भी मिल गया है, तो अब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं ना हर रोज। बाबा के साथ में योग लगा करके उनके साथ हम हर रोज कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये हमारा सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि इस इतने से समय में, थोड़े से संगम युग में, हम बाबा को याद करके, बाबा जो ज्ञान और योग हमें सिखाते हैं उसको जीवन में धारण करके अपना जीवन कैसा बना सकते हैं, कैसा बना सकते हैं हमारा जीवन? सत्ययुगी है ना, सत्ययुगी, देवताओं जैसा, देवी देवताओं जैसा जीवन बनाने की जो ट्रेनिंग है, जो कोचिंग है, जो स्कूलिंग है, वो अभी चल रही है। स्कूलिंग होती है ना, हम लोग अलग अलग तरह की कोचिंग्स में जाते हैं, किसी को नेट क्वालिफाई करना है, किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करनी है, तो हम वो अलग अलग पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर वो एग्जाम देते हैं और फिर पास होते हैं, फिर अलग अलग रैंक्स आती है। ऐसे ही जो आने वाली नई सतयुगी दुनिया है, जो किंगडम एस्टेब्लिश होने वाला है, उसके लिए भी हम अभी इस संगम युग पर शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, और हम अपने अपनी पढ़ाई के अनुसार, जैसे जैसे हम जो बाबा पढ़ाते हैं उसको जितना जितना जैसा जैसा फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी सतयोगी पोजीशन क्लेम करेंगे. तो दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गेटिंग द कोचिंग, व्हेन वी आर गेटिंग द ट्रेनिंग टू बिकम लाइक डीटीज. डीटीज देवी देवता बनने की ट्रेनिंग हमें मिल रही है. तो इससे एक चीज और क्लियर होती है कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है ना. कई बार कई लोग बोलते हैं कि क्या एम ऑब्जेक्ट है जीवन का, या इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का क्या एम ऑब्जेक्ट है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या आंसर है? अभी पता चला ना हम सबको आंसर, क्या आंसर है हम सबका एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों हम ये इतनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कोर्स और ये, ठीक है टेम्परेरी हम इसलिए आए हैं ये सब कुछ करने कि हमें क्या करना है. टेम्प्ररी हम क्या कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे थे कि हम डिस्टर्ब थे, हम परेशान थे, हम स्ट्रेस में थे, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें थी, इसलिए हमको लगा कि हम मेडिटेशन करेंगे तो कुछ फायदा होगा, इसलिए हम आए. लेकिन अभी हमको पता चला कि वो तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं इस लाइफ में. कुछ छोटे से प्रॉब्लम्स को खत्म करना, स्ट्रेस को खत्म करना, वो तो ठीक है, वो तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, वो तो हो जाएंगी. लेकिन अल्टीमेट एम क्या है हमारे जीवन का? अच्छा, पावन बनना, टू स्टेप इन टू सतयुग. यस, टू बिकम सतयुगी. वेरी गुड. मनुष्य से देवता बनना हमारे इस जीवन का लक्ष्य. दुनिया के हिसाब से भाई ठीक है, आपको पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, वो सब अलग अलग है. लेकिन आत्मा के नाते इस पूरे साइकिल का जो हमने चक्र जाना और चक्र लगा लिया, अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? अब मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे हर दिन अपने अंदर से जो आसुरीयता के, दानवता के अवगुण आ गए हैं उनको हटाते जाना है, और हर दिन देवत्व को धारण करके आगे बढ़ते जाना है. अच्छा, साईं कल्पना जी लिखते हैं टू बिकम गेम चेंजर, टू ब्रिंग सतयुग. तो हमें अब क्या करना है, हमारे लाइफ का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ना. अभी तक तो क्या हो रहा था, क्वालिटीज हमारी हर रोज समय के साथ 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 कम होती जा रही थी, पर अब हर रोज हर दिन के साथ हमें अपनी क्वालिटीज को, इनर क्वालिटीज जो 7 क्वालिटीज थी उनको फिर से रीस्टोर करना है, बढ़ाते जाना है. जैसे जैसे वो क्वालिटीज बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली हम सतो प्रधान सतयुगी बनते जाएंगे. चलिए, तो आज हम मेडिटेशन, आज का सेशन हम कर्म फिलोसफी शुरू करें. उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हम साइलेंस में बैठे मेडिटेट करें हम सभी. चलिए, हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे, जहां भी बैठे सीधा होकर के बैठे. मस्तक प्रकृति के बीच अपने दिव्य तेजो में ज्योति स्वरूप को देखें. संकल्प करें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं. इस देह में मस्तक प्रकृति के बीच विराजमान अति सूक्ष्म तेजो में सितारा हूं. मुझ आत्मा से ही इस पूरे शरीर में ऊर्जा है. मैं आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती हूँ, अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ, संवाद करती हूँ, आत्मा शिव बाबा की संतान हूं. सर्वशक्तिमान, प्रेम के सागर, सर्व गुणों के भंडार, शिव बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा एकदम सुरक्षित हूं। जी काल का कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। जिस ईश्वर को मैंने दर दर ढूंढा, याद किया, पुकारती रही, शिव बाबा ने इस लाखों करोड़ों आत्माओं की भीड़ में से मुझे चुनकर अपना बना लिया। मुझ पर अपनी वरदान और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। अपने सामने ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखें, दिल की गहराई से, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, बाबा से कहें, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपकी हूं। अपनी सारी समस्याएं, जो भी बात अंदर में डिस्टर्ब कर रही है, कोई चैलेंज, कोई सिचुएशन, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स में कोई गिल्ट फीलिंग, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना, बात बाबा के साथ शेयर करें। कनेक्ट हो जाए पूरी तरह से शिव बाबा के साथ, अपनी बात बाबा को सुना करके हल्के हो जाए, जैसे छोटा बच्चा सही करता है गलत करता है, माँ को सुनाकर हल्का हो जाता है। ऐसे ही हम शिव बाबा के बच्चे बाबा को भी अपने दिल की बात सुनाकर हल्के हो जाएं। अनुभव करें कि बाबा अनंत प्रेम और शक्तियां मुझ आत्मा को दे रहे हैं। और इस फुलफिलमेंट की फीलिंग के साथ फिर से अपनी मस्तक के बीच स्वयं के शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने मेडिटेशन किया और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कर्म सिद्धांत, आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन। जब हम कर्म की बात करते हैं तो जैसे ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण, चाहे मुझे पता है चाहे नहीं पता है, इट विल अप्लाई ऑन मी और नॉट। चाहे हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता है या नहीं पता है, ये हमारे ऊपर वर्क करता है कि नहीं करता है। साईं करुणा जी कहते करता है। और बाकी सभी का क्या विचार है? इवन इफ वी नो कि करता है ना, तो ऐसे ही जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, चाहे एक छोटा बच्चा है उसको पता हो उसका या नहीं पता हो, संसार के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन ये लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करता ही है। ठीक ऐसे ही ये कर्म सिद्धांत भी हम सभी के ऊपर लागू होता है। हम सभी के ऊपर ये कर्म सिद्धांत भी लागू होता है, चाहे हमें उसकी समझ है कि नहीं है। तो कर्म सिद्धांत को समझना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ऐसा नियम सृष्टि का, ऐसा सिद्धांत जो मेरे जीवन पर वर्क कर रहा है, अगर मुझे उसके बारे में सही ज्ञान नहीं होगा तो हम बहुत कुछ गलत कर जाएंगे। अगर मुझे ये नहीं पता हो कि ग्रेविटी है यहाँ पर और चीजें नीचे ही गिरेगी, है ना, या हम आसमान में छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो हम नीचे ही गिरेंगे, अगर हमें ये नहीं पता हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, देयर इज अ ग्रेविटी, जो हम ऊपर से कूदना चाहें तो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे, तो अगर वो पता नहीं है तो फिर क्या होता है? जैसे बच्चों को हम कई बार सुनते हैं ना, बच्चा तीसरे मंजिल से गिर गया, दूसरे मंजिल से गिर गया, क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि यहां से इधर जाऊंगा ना तो शायद तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन हमें पता है, हम कभी ऐसा नहीं करते। ऐसे ही अगर हमें कर्म सिद्धांत के बारे में पता हो तो हम बहुत सारे जो अपने कर्म हैं जिनसे हम हमारा भाग्य निर्माण कर रहे हैं, हमारा भविष्य निर्माण कर रहे हैं, उन कर्मों से हम बच जाएं। तो जैसे हर एक्शन के लिए कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर होता है। फॉर एवरी एक्शन आई इफेक्ट देयर इज अ रिजल्ट आई एक्सपीरियंस। हम कुछ भी कर्म करते हैं तो उसका फल जरूर आता है। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है सभी को, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? इधर से एक बुक निकाली थी, सिर्फ ऐसे ही मजाक में निकाल ली थी, क्या हुआ जो लास्ट वाला बुक है वो किसके ऊपर आके गिरने वाला है? किसके ऊपर आके गिरने वाला है? किसी और के ऊपर। हमने जो किया वही मिल रहा है। हमने सोचा कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, मजाक में कर दिया, फिर क्या हुआ? जो लास्ट वाला था उसका रिजल्ट किसके ऊपर है? जिसने किया उसी को ही वो रिजल्ट मिलना है। कई बार हो सकता है आज नहीं कल। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं इस, हम कर्म के बारे में जाने तो हमें ये जानना जरूरी है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कर्म होते हैं जो हम जाने और अनजाने में करते हैं। तो कुछ तीन प्रकार की कैटेगरीज है कर्मों की। एक है सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सुकर्म कौन से कर्म होंगे? हम सब चाहते हैं ना, हमको सबको पता है अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य अच्छा बनेगा। वो अच्छे कर्म कौन से हैं? तो ऐसे कर्म है ना, अब हमने सोल कॉन्शियस स्टेट को भी जान लिया है और शिव भावक को याद करना भी हम सीख चुके हैं, है ना। ऐसे कर्म जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके करते हैं और बाबा को, परमात्मा को भी याद करते हुए करते हैं, वो कर्म कौन से हो गए? कौन से हो गए वो कर्म? सुकर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैंने झाड़ू लगाई है ना, मैंने झाड़ू लगाई, लेकिन झाड़ू लगाते समय मुझे ये स्मृति थी कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा झाड़ू लगा रही हूं, और मुझे साथ में ये भी पता था कि शिव बाबा मेरे साथ है, मैं आत्मा उनकी छत्र छाया में हूँ, वो प्रेम के सागर है, उनकी महिमा मेरी बुद्धि में चल रही थी, या उन्होंने जो इतना सारा ज्ञान हमें शेयर किया है वो हमारी बुद्धि में चल रहा था। तो वो कर्म कौन सा कर्म हो गया? था बहुत सिंपल कर्म, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने की क्या वो है ना। लेकिन अगर मेरी मनोस्थिति कौन सी थी? आत्मिक स्मृति थी, शिव बाबा की याद थी, तो वही झाड़ू लगाने में मुझे कितने मार्क्स मिले होंगे? कितने मार्क्स मिले होंगे? +1, क्योंकि सुकर्म था वो, श्रेष्ठ कर्म की गिनती में आया। लेकिन इसकी जगह अगर मैंने झाड़ू लगाई और उस समय मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ही 100 रुपीज का नोट है, चलो इसको रख लेती हूँ, पता नहीं सारे दिन कई एक ये थॉट भी आया, फिर दूसरा थॉट ये भी आया, हर रोज झाड़ू ही लगाऊ क्या, और कुछ काम ही नहीं है क्या, मेरे भी हाथ पैर हैं, उनमें भी दर्द होता है, कितना काम है इस घर में, बस मैं ही करती रहूं क्या, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब फैलाते ही रहते हैं। अगर ये सब संकल्प आ रहे हैं तो ये कौन से संकल्प है? ये कौन से संकल्प है? ये संकल्प है देह अभिमान के, बॉडी कॉन्शियसनेस के, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस जहां पर होगी, हम अपने जीवन में भी चेक करें, जहां जहां हम इस देह अभिमान में आते हैं, देह भान में आते हैं, वहां पर जो 5 वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार है ये हायर हो जाते हैं, और कोई भी कर्म जब देह अभिमान में आकर के किया जाता है तो वो कौन सा कर्म बन जाता है? विकर्म। अब उसका +1 होगा कि -1 जमा होगा, क्या होगा? अकाउंट में क्या जमा हुआ? +1 और -1। निरंजना जी कहते हैं -1। तो -1 अच्छा है कि +1 अच्छा था? तीसरे प्रकार के एक और कर्म होते हैं जो कि हम आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के करते हैं, लेकिन उस समय परमात्मा की याद नहीं रहती है। हम जो कर्म आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के करते हैं वो कर्म अकर्म कहलाते हैं। अकर्म माना जिसका कोई अकाउंट नहीं बन रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सुकर्म +1, विकर्म -1, अकर्म 0। अकर्म 0 क्या कहा? कर्म मतलब अकर्म वो कर्म होते हैं, ये आत्मा की अलग अलग स्टेजेस भी है। अब हमने जाना सत्ययुग और त्रेता युग, फिर हमने देखा द्वापर युग, फिर हमने देखा कलयुग, फिर संगम युग आया। तो जब हम आत्माएं सत्ययुग और त्रेता युग में थी ना, तो आज हम जो कर रहे हैं, हमने कल ये समझ लिया था कि हम संगम युग पर जो कुछ करेंगे उसके बेसिस पर हमारी सत्ययुगी पोजीशंस होंगी। इज इट क्लियर? कि हम अपना भाग्य, जो सत्ययुगी दुनिया का भाग्य है ना, वो सत्ययुगी दुनिया की जो पोजीशंस है, अभी भी हमने बात की ना भाई, उस पोजीशन पे पहुंचना है तो पढ़ाई तो भी करनी पड़ेगी ना। तो सत्ययुगी दुनिया की पोजीशन पे जाने के लिए हम अभी जो कर्म कर रहे हैं, अभी हमको क्या करना है? अभी हमको सुकर्म करने हैं ताकि हमारे पुण्य का खाता बढ़े। अभी हमको आत्मिक स्मृति में रहना है, अभी हमको शिव बाबा को याद करना है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं ये सुकर्म बनते जा रहे हैं। सत्ययुग क्या है? जो हमने अभी किया उसी का ही रिजल्ट है। अभी हमने कर्म किया, और सत्ययुग क्या है? इसका प्रारब्ध कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है प्रारब्ध। हम जो अभी कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हमें कहाँ होनी है? आने वाली नई सत्ययुगी दुनिया में। तो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो सुकर्म है। इससे पहले द्वापर और कलयुग में, इस देह अभिमान में आकर के हमने जो कर्म किए वो कौन से थे? द्वापर युग और कलयुग में। संगम पर हमें सुकर्म का ज्ञान मिला, क्योंकि अभी तो समझ आया ना कि मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान को याद भी करना है ना। इससे पहले कलयुग, और उससे भी पहले अगर हम पीछे जाएं तो द्वापर युग में हम जब देह अभिमान में जीते थे, अपने को ये शरीर समझते थे, अपने को स्त्री पुरुष लड़का लड़की इन सारी भावनाओं में हम जी रहे थे, हम जो कर्म कर रहे थे उस समय वो कौन से कर्म थे? वो कर्म थे हमारे विकर्म, है ना? सभी सही आंसर लिख रहे हैं। और फिर उससे भी पीछे जाए तो हम जब सतयुग और त्रेता युग में थे, हम वहां कर्म तो कर रहे थे, लेकिन वहां हमने कल भी बात की थी कि वहां हमें भगवान को याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको याद करके ही तो हम वहां पर पहुंचे। इस समय याद कर रहे हैं तभी तो सतयुग में पहुंचे। तो सतयुग में हम जो कर्म कर रहे हैं वहां हमें शिव बाबा की याद तो नहीं होती है, क्योंकि भगवान को तो याद ही तब करते हैं जब दुखी होते हैं, अशांत हैं आज की सिचुएशंस में, कलयुग में। सतयुग में तो हम यहां से अपना सारा अकाउंट बना करके जमा करके गए हैं, तो वहां हम जो भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति वहां पर देह अभिमान की नहीं होती है, वहां हम कौन सी स्थिति में रहते हैं? वहां हम सोल कॉन्शियस होते हैं। आप देखिए देवी देवताएं आपस में, अगर पुरानी स्क्रिप्चर्स में उनका कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे ना, तो एक राजा अपनी रानी को कहता था हे देवी, है ना, हे नारी, हे देवी, ऐसे करके, हे माँ, ऐसे करके पुकारते थे। तो कहने का भाव क्या कि उनकी देह भान की, देह अभिमान की कॉन्शियसनेस नहीं थी, उनकी कॉन्शियसनेस थी सोल कॉन्शियसनेस। और उस स्थिति में आत्मिक स्मृति में वो जो भी कर्म करते थे वो कौन से कर्म हो रहे थे? वो अकर्म हो रहे थे। ना उनका पॉजिटिव बन रहा था ना उनका नेगेटिव बन रहा था। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर उनका पॉजिटिव भी नहीं बन रहा था, नेगेटिव भी नहीं बन रहा था, तो फिर भी उनका तो डाउनफॉल हुआ सतयुग से त्रेता युग आए। वो एनर्जी लॉस कहाँ हुआ? वो एनर्जी लॉस बर्थ एंड डेथ के साइकिल में, बार बार आत्मा इस प्रोसेस से गुजरती है, तो इट्स एन एनर्जी कंजम्पशन प्रोसेस। तो उसमें आत्मा की ऊर्जा क्षीण होती जाती है, आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। अभी हमें क्या करना है फाइनली इन तीनों में से? विकर्म हमने बहुत सारे कर लिए ऑलरेडी, है ना, अब नए नए करने हैं। अकर्म सत्युग और त्रेता में होंगे। अभी कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास में? कौन सा ऑप्शन बचता है? अभी हमें अपने इस जीवन में बचा हुआ जितना भी जीवन है, आज तक जो किया किया, लेकिन अब मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, और उसका आधार है आत्मिक स्मृति और शिव बाबा की याद। ठीक है, तो इसीलिए रोज 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 जब हम बार बार मेडिटेशन करते हैं ना, तो इसीलिए बाबा को भी याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए कह रहे लिखना है, बार बार चलते फिरते याद करना है, ताकि जितनी कॉन्शियसनेस नेचुरल होती जाएगी उतना हम नेचुरली कर्मों में इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमारे हर कर्म, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, किसी को ज्ञान सुनाना, है ना, कुछ और किसी की मदद करना, हर कर्म प्लस वन होता जाए। अब माइनस वन करने का ऑप्शन या टाइम हमारे लाइफ में नहीं बचा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने देखा कर्म कितने प्रकार के हो गए, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। अब कुछ कर्म सिद्धांत है। एक तो ये है, हमको ये समझ में आया, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हम भाग्य पाएंगे। जैसा कर्म, जैसा एक्शन, वैसा रिजल्ट। तो मेरा जो भी एक्शन है, कोई भी एक्शन फ्री में नहीं हो रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, हर चीज के लिए हम, मेरा हर कर्म अकाउंटेबल है। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ अकाउंट्स में जा रहा है, बुरा कर रही हूँ अकाउंट्स में जा रहा है। कई बार क्या होता है ना, हमारे इधर जयपुर में ना बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स है, और हर ट्रैफिक लाइट पर, है ना, एवरी ट्रैफिक लाइट, हर लाइट पर चार पांच छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, है ना, और कई बार उनके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ कटोरा। सैटरडे है ना, तो शनिश्चर जी का कुछ मूर्ति लेकर आएंगे, वेडनेसडे है तो गणेश जी लाएंगे, फिर कुछ और दिन है तो कुछ और लेकर आएंगे। एंड दे कम टू योर कार, बाइक, आप जहां पर भी जिस भी साधन में हो ना वहां आएंगे, एंड दे विल आस्क फॉर मनी, उनको आपसे कुछ चाहिए। कई बार जब हम वहां से निकलते हैं, कई लोगों के साथ बैठे होते हैं कई बार गाड़ी में, तो कई लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स होता है, इवन हम सभी का होता है, कि वी ऑल आर ह्यूमंस। तो हमारा ऐसा रेस्पॉन्स होता है कई बार कि ये बेचारे इतने गरीब हैं, इनका भी तो कुछ होना चाहिए, इनके जीवन में भी तो कुछ होना चाहिए। परंतु कोई भी आज जहां पर भी है ना, चाहे कोई ऑफिसर है, कोई अंबानी के घर में है, कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर कोई चौराहे पर जन्म ले रहा है और सारा जीवन वहीं पर ही भीख मांग कर अपना जीवन चला रहा है, कोई भी अपनी पोजिशन पर फ्री में नहीं पहुंचा है। हमारे अपने ही कर्म, माई पास्ट अफेक्ट माई प्रेजेंट, वट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्शन. मैंने जो कुछ अपने जीवन में किया है उसके वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ. तो हम बात कर रहे थे, आई एम सॉरी देयर वाज सम डिस्टरबेंस. तो हम बात कर रहे थे कि आज जो भी मनुष्य जहां पर भी है वो ऐसे ही नहीं है. वहां पर हमने ही ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज हम जो भी हैं वो अपनी अपनी जगह पर ही है, चाहे कोई रोड पर है और चाहे कोई महलों में बैठा है. माई पास्ट हैज अफेक्टेड माई प्रेजेंट. और अगर आज भी मैंने अपने कर्म नहीं सुधारे तो मेरा फ्यूचर भी, आज जो मैं कर रही हूँ मैं अपना फ्यूचर लिख रही हूँ, हम सभी. और ये अगर सिद्धांत हमें पता नहीं है ना, इसीलिए आज देखिए बहुत सारे यूथ को जब हम देखते हैं, बिकॉज अनअवेयर अबाउट द कार्मिक फिलोसफी, बहुत सारा समय शक्ति वेस्ट में जा रही, पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही, दे ऑल्सो डोंट नो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो ही हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है. और मुझे इस जीवन में जो कुछ मिल रहा है वो वही है जो मैं डिजर्व करती हूँ. डिजर्व क्यों करती हूँ वो चीज, भाई आज मैं बहुत डिप्राइव्ड सिचुएशंस में हूँ, हो सकता है हमारे पास में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं हो, हमें दूसरों को देख करके लगता है इनके लाइफ में तो सब कुछ है मेरे पास नहीं है. क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? एक बार किसी का एक कोट है कि अगर आप किसी गरीब घर में जन्मे है ना तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपकी मृत्यु भी उसी स्थिति में हो गई, उसी गरीबी में ही आपने शरीर छोड़ दिया, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल. वैसे तो जन्म हुआ, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही हुआ, लेकिन चलो वो पास्ट के कर्म तो अब हम जो हो चुके हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, पर आज के कर्म तो हमारे हाथ में है ना. और इस लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है. कई बार कहते हैं ना बाय चांस ऐसा हुआ, बाय चांस, ठीक है वो कहने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब कुछ प्लान्ड है. हम जो करके आए ना उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ हो रहा है. देयर इज नथिंग बाय चांस. और मेरा भाग्य मुझसे कोई नहीं छीन सकता. ये कर्म की रूल्स हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो इन रूल्स, ये रूल्स उसको गवर्न करते हैं. हमारे घर से आज हमने मान लो नई कार खरीदी है, कोई ज्वेलरी खरीदी है ना, कोई अच्छी चीज खरीदी है, कोई आर्टिकल है, लैपटॉप है, मोबाइल, एनीवन कैन स्नैच देम. कोई चोरी कर सकता है, कोई खींच के ले जा सकता है, कोई उसे खराब कर सकता है, लेकिन मेरा जो भाग्य है उसको कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो कौन करके आया, वो हम खुद ही लिख करके आए, और वो सिर्फ मेरा है, उसको कोई नहीं खींच के ले जा सकता. मोबाइल जरूर, इसीलिए कई बार कहते हैं ना बड़े लोग, जब हम छोटे होते हैं कुछ चोरी हो गया है ना, कुछ मोबाइल खराब हो गया, या छोटे थे तब तो शायद एक पेंसिल रबड़ भी खो जाता था है ना, या कोई और बड़ी चीज भी कभी खोई थी, तो बड़े लोग ऐसे कहते थे घर के कि कोई बात नहीं ना और आ जाएगा, क्या हो गया, एक वो ही तो लेकर गया, एक चीज ही तो लेकर गया, आपका मोबाइल ही तो लेकर गया, कोई आपकी किस्मत थोड़ी ना ले गया. कई बार रिजल्ट कम आ गया किसी भी कारण से, कि शायद किसी दूसरे ने किसी और तरीके से अच्छे नंबर ले लिए, हमारे कम आए, तो ऐसे कहते थे बड़े लोग कि क्या हो गया, तो आपका कोई भाग्य थोड़ी ना ले गया, आप मेहनत करो फिर आगे निकल सकते हो. तो हमारा भाग्य कोई हमसे नहीं छीन सकता है, और आज हम जो कुछ भी हैं उसके जिम्मेवार हम स्वयं ही. हमारे क्लास में शायद ही कोई बहुत छोटा बेबी बैठा होगा, हम सब एक समझदार उम्र के हैं, तो आज हम सभी जहां पर भी है, जिस भी हाल में है, हम अपने जीवन के रिस्पॉन्सिबल है. आई थिंक स्क्रीन पर आप सभी को 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या ये 6 दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर सभी को, और यू आर एबल टू सी ओनली 3 पॉइंट्स? ऑल 6 आर विजिबल. ओके, थैंक यू, थैंक यू. तो हमने देखे कर्म रूल्स, कर्म सिद्धांत हमने जाना. इसके बाद कर्म का जो फल है उसको भी बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है, लेकिन हम उसको जानने से पहले देखते क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारी बुद्धि के अंदर चलती है। कई बार जीवन में बहुत कुछ होता है तो हम क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो हमारे मुख से फटाफट से क्या निकलता है, क्या निकलता है, भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करता है, भगवान ने तो हमेशा मुझे ही दुख देना है, भगवान तो बहुत दुख देता है, हर बात का इल्जाम किसके ऊपर आता है, कि भगवान जी आके कुछ कहने नहीं वाले ना, इसलिए हम सब कुछ भगवान के सिर पे लगा देते हैं। अच्छा होता है तो भी, बुरा होता है तो भी, इररेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि वो तो दुख हरता सुख करता है, वो भाग्य विधाता है, वो हमारे माता पिता है, कुछ भी गड़बड़ उनके वजह से नहीं हो सकता, कुछ भी गड़बड़ जो होता है वो हमारी ही वजह से होता है। कई बार कहते हैं हम, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे तो भाग्य में लिखा ही ऐसा है, कई मान्यता है हमारी, जो जीवन में हमें फल मिल रहे हैं ना, उनको हम इन चीजों पे डाल के अपने कर्मों को सुधारने से फ्री हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ, एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैंने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आया, आई वाज नॉट सिलेक्टेड। हम क्या कहते हैं, मेरा तो भाग्य ही ऐसा, तीन बार दे दिया, लेकिन हम इस लाइन को बोल करके हम क्या कह देते, इस लाइन को बोल करके हम अपने कर्म की गुणवत्ता को सुधारने से पीछे हट जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है हमारे जीवन में। कई बार हम कहते अरे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब ठीक नहीं मिली है, घर में बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है, कि ना जिस घर में हम रहते हैं ना इसकी तो वास्तु ही खराब है, इस घर में ना ये इस कॉर्नर में तो वो होना चाहिए था, उस कॉर्नर में वो होना चाहिए था, इसीलिए इस वास्तु की वजह से ना मेरे लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? हम सभी, आप सभी भाई बहने जहां से भी ज्वाइन है, सब फैमिलीज में रहते हैं, इस तरह की बातें हमारे यहाँ सब चलती है, ऐसे ही बोलते हैं ना, वास्तु खराब इसलिए हो गया। फिर कई बार कहते हैं अभी तो मेरे तारे सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, मेरे पे तो राहु की दशा लग रही है, अभी वो शनि शनि की दशा, शनि की साढ़े साती है और उसकी ये महादशा है, फिर ये है इसलिए ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार कि मैंने आज ये पूजा नहीं की ना इसलिए ऐसा हो गया, वो पाठ नहीं किया ना इसलिए वैसा हो गया, उन गुरु जी के नहीं गए ना इसलिए ऐसा हो गया। इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज हमको क्या करना होता था, इन सबकी जगह पर जहां जहां भी प्रॉब्लम्स आई, जहां जहां भी फेलियर्स आए, हमको अटेंशन कहाँ देना था, कहाँ देना था अटेंशन, हमको अपने कर्म की क्वालिटी को चेक करना था कि मैंने कहाँ गलती करी, मेरे कर्म में कहाँ गलती हुई। भाई एग्जाम में हम सेलेक्ट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, मेरी तैयारी कहाँ कम रह गई, हमने उसको नहीं सोचा, हमने क्या, अरे पेपर ही बहुत डिफिकल्ट आया था ना, क्या करते, इस साल तो कोविड की वजह से ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बट स्टिल आई एम नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन माई सेल्फ कि मैंने जब वो छह महीना तैयारी की ना, मैंने रोज छह छह घंटे इधर उधर भी लगाए हैं, बहुत सारा टाइम व्हाट्सएप में भी लगाया, बहुत सारा टाइम इधर उधर भी लगाया है ना। और कई बार हम कह देते कि कुछ काला जादू करवा दिया इन्होंने हमारे ऊपर, कुछ जादू टोना करवा दिया ना, इसलिए हमारे लाइफ में ऐसा हो रहा है। परंतु परमात्मा शिव बाबा जो ज्ञान के सागर है और कर्मों की गहन गति के ज्ञाता है, जब वो इस सृष्टि पर आए, जब उन्होंने राजयोग का ज्ञान दिया, तब उन्होंने कहा कर्म बड़े बलवान, तो शिव बाबा ने हमें कर्म सिद्धांत के बारे में समझाया। तो अब हमें अपना अटेंशन कहाँ पर रखना है, अपने कर्मों में। तो कर्म रूपी जो बीज है ना, इसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे हम कोई बीज लगाते हैं फिर क्या होता है, बीज लगाते हैं फिर क्या होता है, हमको राइट उसको धूप भी चाहिए होती है, उसको पानी भी चाहिए होता है ना, उसको हवा भी चाहिए होती है, और ये सब कुछ है, धूप भी आ रही है, पानी भी है, हवा भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कई बार उसमें फल नहीं आता है। फिर भी क्यों नहीं आता है फल, क्यों नहीं आता है? भाई आज मैंने पेड़ लगा दिया है ना, ना तो ठंडी है ज्यादा, ना गर्मी है ज्यादा, है ना, और फिर उसको धूप भी प्रॉपरली मिल रही है, पानी भी हम ठीक से डाल रहे हैं, हवा भी ठीक है, पर फिर भी उस पेड़ में से कोई फल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा फल? नेक्स्ट, क्यों नहीं आ रहा फल उस पेड़ में से? किसी का जवाब नहीं आ रहा है या मुझे नहीं दिखाई दे रही? सीड की प्रॉब्लम है, सीड क्वालिटी बैड है, और क्या बात है, और क्या बात हो सकती है, फल क्यों नहीं आता किसी भी पेड़ में से? यस, टाइमिंग, किसी ने लिखा है टाइमिंग, कहते हैं माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए फल होए, है ना। अगर हमने सब कुछ भी ठीक किया परंतु फल तो तभी आएगा ना जब सीजन है। आम का पेड़ मैंने आज लगा दिया, अब मैं पूरे 6 महीने तक सोच रही हूँ, 6 भी नहीं लगभग 8 महीने मैं सोच रही हूँ इसमें तो कोई पेड़, इसमें तो कोई फल नहीं आ रहा, इसमें तो कोई फल नहीं आ रहा, इसमें कोई फल नहीं। फिर जब ये मौसम आएगा आम का तभी तो फल आएगा ना, अभी कैसे आ जाएगा। मैंने सब कुछ किया बेस्ट है ना, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही आएगा। ऐसे ही हम अपने इस जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसको भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। मैंने एक कर्म किया, कोई भी कार्य किया, उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या था, वॉज द इंटेंशन राइट और रॉन्ग। इंटेंशन राइट था तो उसका रिजल्ट भी मुझे राइट मिलता है। कर्म तो मैंने बाहर से दिखाने को तो सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर मेरी अंदर की वृत्ति इंटेंशन वॉज नॉट राइट, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रिजल्ट होगा। कर्म तो मैंने बाहर से एकदम परफेक्ट किया, मुझे जो कहा गया था मैंने वैसे वैसे बिल्कुल कर दिया, पर करने के समय जब मैं कर्म कर रही थी मेरे इंटेंशन ठीक नहीं थी, मेरी वृत्ति ठीक नहीं थी, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा उस कर्म का या नेगेटिव, नेगेटिव। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती, हमने रॉन्ग इंटेंशन के साथ में उस कर्म को पूरा कर दिया। एक्स पर्सन ने, फैमिली मेंबर ने मुझे कहा था आप ये कर दो, मैंने कर दिया, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और मैं करने के बाद क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मैंने इतना किया, मैंने ये किया तो मुझे रिजल्ट भी वैसा ही मिलना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट सिर्फ बाहर के कर्म पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके इंटेंशन पर भी डिपेंड कर रहा है। मैंने अगर नेगेटिव इंटेंशन से किया तो रिजल्ट भी, इवन इफ द वर्क वॉज डन एब्सोल्युटली ओके एज पर द अदर पर्सन, बट मुझे उसका जितना रिजल्ट, हो सकता है नेगेटिव तो नहीं हो लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता है। कर्म की क्वालिटी क्या थी, मुझे बोला गया झाड़ू पोछा करना है घर का, मैंने एक तो हम सबको आता है 2 मिनट वाला करना और एक आता है ठीक से करना, है ना, तो वो क्वालिटी क्या थी कर्म की, उस पे भी हमारा रिजल्ट निर्भर करता है। मेरा फोकस कहाँ था, अटेंशन कहाँ था, समय, अभी जो हमने बात की कि ऋतु आई तब फल हुए, कई बार सब कुछ ठीक था, हमको लगता है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इतना किया कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम सबने अपने जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति में यह अनुभव किया है कि जब राइट टाइम आता है तो फिर क्या होता है, जो हमने किया होता है ऑलरेडी, बहुत कुछ एफर्ट्स हमने पास्ट में किए होते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है और उस समय हमें इतनी ज्यादा खुशी होती है, हमें लगता है ओ हमारी वो 5 साल पहले की मेहनत सफल हो गई। होता है कि नहीं होता है, साथ में से कईयों के साथ हुआ होगा, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं, अब हम उस बात को ही भूल गए थे, आज अचानक से पता चलता है ओ वो इतने सारे रिजल्ट्स की वजह से आज हम यहाँ पर है, इतने सारे एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर पहुंचे। ऐसे ही जो भी सराउंडिंग्स है उसका भी इफेक्ट आता है और कई बार सिचुएशन का भी इफेक्ट आता है कि हमने कौन सा कर्म किस सिचुएशन में किया था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कर्म के फल को प्रभावित करते हैं। कर्म तो हम करते हैं लेकिन जो फल है वो इन सभी फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो हमने अब कुछ और बातें भी है जानने की इस कर्म सिद्धांत के बारे में, कुछ और रियलाइजेशंस है। जब हमने ये जान लिया कि कर्म के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या थी, हमने देख ली कि वास्तु, भगवान या इनके वजह से कुछ भी मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, फिर हमें ये भी समझ आ गया अब कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल इन सब बातों पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब क्या रियलाइजेशन है, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस सेल्फ, नो एफर्ट नो रिजल्ट। उनमें से बहुत सारी बातें जो हम सब सुनते आए हैं, बहुत कई बुक्स में पढ़ी होगी, कई कोर्ट्स के फॉर्म में देखी होंगी, पर अब हमें इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सुनना है सुनना है सुनना है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, नाउ इट्स द टाइम टू चेंज। हमको अपनी थॉट पैटर्न को, हमारे कर्म करने को चेंज करना है। हम कोई कर्म नहीं करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर आती है, पास्ट इज पास्ट, पुट अ फुल स्टॉप। जो हो चुका आज तक, आज से पहले तक इस जीवन में जो कुछ भी हो चुका है उसको क्या करना है, हमें उसको क्या करना है, उसको फुल स्टॉप लगा देना है। क्यों लगा देना है, कल भी हमने देखा था सृष्टि चक्र में कि पुट अ फुल स्टॉप, हमने अष्ट शक्तियों में भी देखा था, जब हम मेडिटेट करते हैं आत्मा में शक्ति आती है कि बातों को हम फुल स्टॉप कर सके। फुल स्टॉप क्यों इतना नेसेसरी है, आज देखिए कई सारे लोगों से मिलना हुआ, स्टूडेंट्स और कई बड़े एडल्ट्स, अच्छे सक्सेसफुल लोग, कुछ एक से मिले भी और कुछ एक के अनुभव सुने या कहीं से उनके फीडबैक्स मिले, तो जीवन से बहुत निराशा है, हताशा है और चाहते हैं कि इतनी गलतियां हमने जीवन में कर ली या इतनी बार हम जीवन में फेल हो चुके हैं या हमारे रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं या फाइनेंशियल सिचुएशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिर पे बहुत सारा कर्ज है, तो कई बार मनुष्य को लगता है कि क्या करें, हम आत्महत्या कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लास्ट 10-15 सालों से कभी ऐसा कोई साल नहीं गया जबकि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड नहीं किया। एवरी ईयर देयर इज अ सुसाइडल केस इन द मेडिकल कॉलेज, और ये एक कॉलेज की हालत नहीं है, सब जगह यही हालत है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बातें हो चुकी है जीवन में, हम उनको फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे, और नहीं लगा पा रहे तो वो बार 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 वही 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 वही, और फिर क्या लगता है, छूटने का साधन क्या लगता है हमको, कि इस जीवन को ही समाप्त कर दिया जाए। परंतु कर्मों की गहन गति के साथ में, कर्म सिद्धांत के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इज ऑल्सो एसोसिएटेड, पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ पर आता है। जब हम आत्मा, हमने क्या बात की, हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं, है ना, 84 का चक्र है, 84 शब्द हम सबने सुना होगा, लेकिन इस 84 के साथ में सुना होगा 84 लाख योनियां लेते हैं, लेकिन परमात्मा शिव बाबा ने जब हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, आत्माओं का ज्ञान दिया, तो उन्होंने बताया 84 लाख योनियां नहीं होती है, 84 जन्म होते हैं। क्या समझा हमने, 84 लाख योनियां, मतलब यही मान्यता थी ना, आज मैं मनुष्य हूं, अगले जन्म में मैं कुछ गलत करती हूँ इस जन्म में, तो अगले जन्म में मैं गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुछ भी बनूंगी। और जब पूरी 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां हम भोग लेते हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिलता है, यही मान्यता थी ना? लेकिन शिव बाबा ने आकर के रेक्टिफाई किया है, करेक्शन किया है, हमें सही समझ और सही ज्ञान दिया है कि 84 लाख योनियां सृष्टि पर हो सकती है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में प्रवेश नहीं करती है। मनुष्य आत्मा ने शरीर लिया है, मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ेगी तो किस रूप में फिर से जन्म होगा हमारा, किस रूप में होगा, फिर से मनुष्य के रूप में ही होगा, कभी भी हम गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर आदि नहीं बनेंगे। तो पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी ने सुसाइड भी कर लिया, आज बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, जीवन से निराश है, लगता है जीवन को ही खत्म कर दो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सिर्फ और सिर्फ ये शरीर छूटेगा, आत्मा फिर भी अपनी जर्नी करेगी, हम कर्म सिद्धांत से छूट नहीं सकते। जो कर्म कर लिए हैं आज, चाहे इस शरीर में चाहे किसी और शरीर में चले जाएं, वो कर्म होते उस कर्म का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो व्हाट इज अ बेटर वे, तो फिर क्या करें जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत परेशानियां हैं, जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, अब इस स्थिति में क्या किया जाए? जीवन से हार मानना, शरीर को छोड़ देना, आत्महत्या का रास्ता अपनाना इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हम पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाएं, जो हो गया हो गया, क्या हो गया, जितनी भी बड़ी बात हो गई, कितनी भी बड़ी बात हो गई, लेकिन जीवन खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी वेटिंग। हमें जहाँ है, हम जिस हाल में है, वहीं से अपने आप को संभालना है। और अगर हमारे क्लास में ऐसे कोई भी भाई बहन है, तो उनसे तो सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, इतनी ही गुजारिश है कि स्पिरिचुअल क्लास को कम से कम एक महीने तक एक्सपेरिमेंट करके देखें, अगर परिवर्तन ना आए, अगर परिवर्तन ना आए जीवन में, तो ये बहुत अजीब बात होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में, सोच में, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन ना आए। हर दिन, क्योंकि ये ज्ञान किसी मनुष्य का नहीं है, ज्ञान किसी बहन जी का, किसी भाई जी का नहीं है, ये ज्ञान परमात्मा ज्ञान है। अपने आप को एक चांस देना है, एक अपॉर्चुनिटी देनी है आगे बढ़ने की। जो हो गया सो हो गया। हमने क्या देखा था, कोई हमारा भाग्य नहीं छीन सकता। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस लग गया होगा, हम बहुत बड़े एग्जाम में फेल हो गए होंगे, बहुत कुछ हो गया, रिश्ते नाते बहुत खराब हो गए होंगे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी दुनिया, हजारों अपॉर्चुनिटीज है, और अच्छा सर्वश्रेष्ठ भाग्य तो हमारा तब है जब हमें ये ज्ञान मिल रहा है, हमें परमात्मा का सानिध्य मिल रहा है। उससे ऊंची शक्ति इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। तो ऐसे विचार इस जीवन से, मन और बुद्धि से निकाल देने हैं, क्योंकि कर्म का तो सामना फिर भी करना ही पड़ेगा। जो कर दिया है उसको तो फिर अब स्ट्रांगली फेस करना ही है, लेकिन अब से और अभी से उन कर्मों को, उन संकल्पों को हमें परिवर्तन करना है। जो कर दिया उससे डरना भी नहीं है, क्योंकि हो चुका है ना, डर डर के भी क्या करेंगे। सॉल्यूशन तो सिर्फ यही है कि अब आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब अपने कर्म परिवर्तन करके अपना भाग्य परिवर्तन करना है। एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट्स, जो सिचुएशन आज है उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि भविष्य अभी भी मेरे ही हाथों में है, मेरा भविष्य किसी और के हाथों में नहीं है, भविष्य फिर भी हमारा अपने ही हाथों में है। तो ऐसा कोई भी गलत विचार के जीवन को ही समाप्त कर दे या कुछ हो जाए, क्योंकि फिर से अगली जर्नी पर जाना है आत्मा, क्योंकि पुनर्जन्म, मनुष्य आत्मा का जो अगला जन्म है वो भी मनुष्य के रूप में ही होगा। हम कभी भी गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर नहीं बनेंगे। जैसे कि अगर आम के पेड़ का बीज है, उसको हम सर्दी में लगाएं, गर्मी में लगाएं, भारत में लगाएं, पाकिस्तान में लगाएं, अमेरिका में लगाएं, अफ्रीका में लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, उससे आम ही निकलेंगे, कुछ और चेंज हो जाएगा। आपकी गुठली अगर बोएंगे तो जब वो वृक्ष बनेगा और उससे फल आएंगे और फूल और फल आएंगे, तो वो आम के ही आएंगे या किसी और चीज के आएंगे? आम के आएंगे ना। मैंगो ट्री विल ओनली गिव मैंगो फ्रूट्स। ऐसे ही ये जो सीड है, सोल इज ऑल्सो अ सीड, इस सीड में जो कोडिंग है ना, उससे मनुष्य शरीर को ही ये चला सकती है, मनुष्य शरीर में ही ये फिट होकर के वर्क कर सकती है। तो वी विल नेवर गो इनटू एनी अदर स्पीशीज। हम मनुष्य आत्मा है, मनुष्य के रूप में ही हमें पुनर्जन्म लेना है। इसीलिए तो हमने बात की ना, कलयुग अंत, संगम युग पर शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। अभी भी हम मनुष्य ही हैं, सत्ययुग में भी हम मनुष्य ही होंगे। फर्क क्या होगा, अभी हम साधारण मनुष्य है, और इस समय अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, शुद्ध श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तो हम भविष्य में भी मनुष्य होंगे, लेकिन उन मनुष्यों में दैवी गुण होंगे, तो उनको देवता कहा जाएगा, उनमें देवत्व होगा, उन्हें देवता कहा जाएगा। तो हमें इस जीवन में औरों के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना है। मेरा भाई तो इतना हाई पोजीशन पे पहुंच गया है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे पड़ोसी ये, मेरी कलीग ये, मेरी वाइफ ये, मेरे हस्बैंड ये, इन सब बातों के साथ, बहुत सारी चीजों में, लोगों में, चाहे भौतिक सुविधाओं में, चाहे सूक्ष्म क्वालिटीज में, टैलेंट्स में, स्पेशलिटीज में, हमें अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज वी ईच एंड एवरी सोल इज यूनिक। हर कोई यूनिक है, हर एक के, हो सकता है दो लोगों के चेहरे सेम मिलते होंगे। कई बार हम देखते हैं ना, दो बच्चे जुड़वा जन्मे हैं, चेहरे एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों की चॉइसेस, दोनों का कार्य व्यवहार, रंग ढंग, बोल चाल, और उन दोनों का जो भविष्य बना, हो सकता है एक इंजीनियर बना और एक डॉक्टर बना, चेहरे फिर भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दोनों आत्माएं जिन जिन जगहों से आई है, जैसे जैसे कर्म करके आई है, वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर आई है। हर एक का अपना अपना है, तो वी डोंट नीड टू कंपेयर ourselves with the others। और कई बार जीवन में कुछ छोटी छोटी दो तीन घटनाएं हो जाती है, उन सब में मान लीजिए मैंने एक एग्जाम दिया फेल, दूसरा दिया फेल, तीसरा दिया फेल, हमने क्या टैग लगा लिया, दो तीन छोटे छोटे एपिसोड हो गए ना, हमने क्या टैग लगा लिया, अरे मेरा तो कहीं होना ही नहीं है, इतनी मेहनत कर ली, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा ये, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे इंसिडेंसेस, एपिसोड जो जीवन में हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती है, उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं लगाना है, करते जाना है, करते जाना है, अपनी तरफ से हमें बेस्ट करते जाना है, अपने आप भाग्य बदल जाएगा। तो हमने कर्म सिद्धांत के बारे में तो बहुत सारी और भी बातें हैं, परंतु समय की सीमा है, तो हम आज एक स्लाइड और लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बाकी कुछ रहेगा तो हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आज हमको ये समझ आ गया कि कर्म बहुत बलवान है, और जो हमने पास में बहुत सारे कर लिए परंतु बहुत सारा माइनस का अकाउंट ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया, तो उसको कैसे क्लींस करें, उसको कैसे खत्म करें। ये क्वेश्चन है कि नहीं आप सभी के मन में, कि आज से तो भाई हमको समझ आ गया कि अब हमें गड़बड़ नहीं करनी है, लेकिन जो गलतियां ऑलरेडी हो चुकी है, जो हमें समझ है कि ये मैंने रॉन्ग किया था, अगर हम अपन अपन सब अपने जीवन को 4-5 साल के थे तब से लेकर आज तक याद करें, और हम अपनी सारी गलतियों को, जो भी मोटे मोटे गलत कर्म है, छोटे छोटे तो फिर बहुत सारे होंगे, पर जो बड़े बड़े हैं, जैसे मैंने उस दिन किसी पर हाथ उठाया था, इन झूठ बोला था, उधर से ये सामान उठा लिया था, फिर उनके साथ ये चीट किया था, ऐसे बहुत सारे कर्म हमारे यहाँ पर हैं, उन सब के इम्प्रेशंस हमारे यहाँ पर हैं। अब उन कर्मों के जो गिल्ट है, जो उनका जो उनके वजह से आज हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई मैंने कुछ गलत किया था तभी तो आज लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे, तभी तो आज कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, तभी तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं। तो कैसे उस पास्ट के कर्मों को चुकता किया जाए, उसके दो तरीके हैं ना, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दो तरीके। एक तो है सजाएं खाकर, सजाएं खाकर इसको कहते हैं अध्यात्म के भाषा में, कहते हैं भोग बल, और दूसरा है योग बल। भोग बल तो जैसे हम सब कर ही रहे हैं ना, आज तक क्या हो रहा था हमारे जीवन में, बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं, और लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा भी चलता है, लेकिन हर बात में बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत मेहनत, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और फिर हम कुछ कर पाते हैं, बहुत सारे संघर्षों को क्रॉस करके हम कुछ कर पाते हैं। ये हो गया भोग बल, कि हमें सजाएं मिल रही है ना, भाई हमने कुछ गलत किया। एक तो भाई चोर चोरी करता है उसको पुलिस जेल में डाल देती है, तो वो भी तो सजा ही है ना। जैसे ऐसे हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये भी तो पनिशमेंट से है ना, हमारे कर्मों का ही तो पनिशमेंट है ये भी, जो जो सब कुछ हम फेस कर रहे हैं ऑब्स्टेकल्स के फॉर्म में, विघ्नों के फॉर्म में। दूसरा तरीका शिव बाबा हमें सिखाते हैं तपस्या के द्वारा, राजयोग के द्वारा। क्योंकि जैसे हम सबने देखा होगा ना, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, सब जानते भी होंगे कि जब एक लेंस होता है ना, उस लेंस को बच्चे सूर्य की किरणों के नीचे रखते हैं, और उसके नीचे एक पेपर रखते हैं, शायद 4th 5th क्लास के साइंस के बुक में भी आता है, तो फिर वो पेपर क्या होता है, पेपर जल जाता है ना, क्योंकि वो लेंस सारी सूर्य की किरणों को एकाग्र करके उस पर डालती है, तो एकदम एक पॉइंट से वो जलना शुरू होता है पेपर। ऐसे ही राजयोग भी क्या है, जब हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं परमात्मा पर, शिव बाबा पर, तो उनसे जो शक्तियां हमें मिलती है, तो जो पास्ट के विकर्म है ना आत्मा के ऊपर, पास्ट के बहुत सारे गलत 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 कर्म जो यहाँ पर चढ़े हुए हैं, जिसकी मैल चढ़ी हुई है, वो क्या होते, वो क्लींस होते जाते हैं, वो क्लींस होते जाते हैं, वो क्लींस होते जाते हैं। जो हम रोज बात कर रहे हैं ना कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे सातों गुण रिस्टोर हो जाएंगे, हम मेडिटेशन करेंगे तो ये अष्ट शक्तियां आएंगी, हम मेडिटेशन करेंगे तो शांति मिलेगी, कामनेस आएगी, पीस आएगी, प्योरिटी आएगी। कारण क्या है, क्योंकि जो नेगेटिव इकट्ठा हुआ है ना, बहुत सारा वेस्ट, वो सब खत्म होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो कर्मों को नलिफाई करने का, माइनस 100 है मेरे अकाउंट में, प्लस में अभी 5 ही है, प्लस में अभी 10 ही है, उस -100 को हटाने का तरीका है राजयोग, शिव बाबा को याद करना, तपस्या करना, तप के बल से हम पास्ट के विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। परंतु यहाँ एक बहुत सुंदर लाइन बोल्ड में लिखी हुई है, सभी भाई बहनों को दिखाई दे रही होगी, बट नॉट थ्रू चैरिटेबल एक्टिविटीज, है ना। जैसे एक इसका एक इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने किसी के साथ में बिजनेस किया और उस बिजनेस में कुछ बेनिफिट, प्रॉफिट तो नेचुरली जो भी प्रोसेस था उसके थ्रू मुझे मिला ही, पर मेरा बिजनेस ना पार्टनरशिप में था, और जो मेरे पार्टनर थे उनको मैंने थोड़ा बहुत कुछ उल्टा पुल्टा, थोड़ा डिसीट करके, थोड़ा चोरी से मैंने 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा कमा लिए, कैसे भी करके, उनको नहीं पता चला, बट आई गॉट दैट 10,000 रुपीज मोर, है ना। अब ये मेरा कर्म कौन सा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, कर्म ठीक था या रॉन्ग था, मैंने चीटिंग करके कमाए, क्या था ये, कैसा कर्म था, नेगेटिव, रॉन्ग था ना। अच्छा, अब मैंने क्या सोचा, अब हमारे गली में अभी कुछ दिनों में वो पौष का महीना आने वाला है ना, जब वो पौष बड़े बचपटते हैं सभी मंदिरों में, कोई कई वो सहस्त्रधारा होती है सावन के महीने में, है ना, कई सवा मणि होती है। तो वो क्या हुआ, वो पड़ोस के लोग ना आए मेरे पास में चंदा लेने के लिए, कि भाई आप ना इस कार्य के लिए इतना रुपीस का कंट्रीब्यूशन कर दो, या कुछ भी जो आपकी स्वेच्छा से आप करना चाहते हैं ना, आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए। अब मुझे तुरंत क्या थॉट आया, मुझे लगता है अरे वो 10,000 वहां से कमाए थे ना, यहाँ दे देते हैं, अपने तो है नहीं वैसे भी, उधर से आए थे, चलो इधर दे देते हैं, दान पुण्य हो जाएगा, ईश्वर के नाम पे लग जाएंगे, तो अपनी कोई वो भी नहीं जाएगी, अपना कोई नेगेटिव कर्म भी नहीं होगा। तो क्या वो मेरा अकाउंट जीरो हो गया ऐसा करने से? अकाउंट जीरो नहीं हुआ। दिस इज व्हाट, यही है वो बात जो हमने कही कि हम अपने जो कर्म हमने किए हैं उनको नलिफाई करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम उसकी सजा खाएं, या उसे राजयोग के बल से उस कर्म को ही सुधारें, उस कोडिंग को ही ठीक करनी पड़ेगी ना, कि ये कर्म रॉन्ग है और मुझे नहीं करना है आगे, और जो हो गया उसको परमात्मा को याद करके उसको नलिफाई करना है। चलिए, तो इसमें अभी कुछ कुछ बातें और भी है कर्म सिद्धांत में, हम कल का सेशन जब कंटिन्यू करेंगे तब हम इसको और क्लियर करेंगे। आपके कुछ प्रश्न भी होंगे, सुप्रिया दीदी है हमारे साथ, तो एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी आपके लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा गया है, तो उस सेशन में आपके जो भी प्रश्न है, चाहे आज के सेशन से रिलेटेड, चाहे पिछले किसी भी सेशन से रिलेटेड, उनके भी आंसर आप सभी को मिलेंगे, क्योंकि पूरा सेशन ही प्रश्न उत्तर सेशन रहेगा। तो आज का सेशन हम मोनिका वैन, ओके, 30th अक्टूबर 2021 को, मतलब कल नहीं परसों के दिन, आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर राउंड रखा गया है, और आज आपको जो क्विज मिलेगा उसमें आप, उसमें कॉलम होगा जहां आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, तो आप जरूर अपना प्रश्न लिखें, ताकि उन सभी प्रश्नों के समाधान आपको आने वाले सत्र में मिल सके, और हम सभी को ये जर्नी अभी कंटिन्यू रखनी है ना, सब कंटिन्यू रखेंगे ना नेक्स्ट फॉर 1 month, है ना, क्योंकि अभी वैसे भी देखिए जिस दिन से आपका ये कोर्स शुरू हुआ है, शायद उसी दिन से लगभग कार्तिक मास भी शुरू हुआ है उसी दिन या उसके एक दो दिन आगे पीछे से, और दुनिया के हिसाब से भी ना बहुत स्पिरिचुअल मंथ होता है, इसमें बहुत सारे लोग पूरा एक महीना व्रत रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ठंडे पानी से कहते हैं तारों की छाव में नहाना है, और बहुत कुछ रिचुअल्स करते हैं, तो वैसे भी एक आध्यात्मिक महीने के रूप में ये मास मनाया जा रहा है, इसी समय दीपावली भी आ रही है, बहुत कुछ चल रहा है इस कार्तिक मास में, तो क्यों नहीं हम सभी भी अपने आप को एक महीने का टाइम दें और एक महीने के लिए स्पिरिचुअल स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इतना टाइम और एनर्जी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो फिर पूरा ही बेनिफिट लेना है। कल भी बात की थी ना, आइदर डिसअप्रूव और अप्रूव, बीच में नहीं छोड़ना, जब तक डिसअप्रूव नहीं हो जाती है तब तक कंटिन्यू करना है, और या फिर अप्रूव करके और पूरा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है। थैंक यू, ओम शांति,
ओम शांति दीदी,
ओम शांति। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स की वेबसाइट है, जैसे कहा दीदी ने बताया कि इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, और सबसे सुंदर समय आ रहा है दिवाली का, अपनी आत्मा की ज्योत को और जलाने के लिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं। आप हमारे ब्रह्मा कुमारी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.brahmakumaris.com, ये इंडिया की वेबसाइट है, और www.brahmakumaris.org, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। अगर आपको कहीं पे भी नजदीकी सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारीज के जो भी सेवा केंद्र हैं उसका एड्रेस चाहिए तो नीचे उसका हमने वो दिया है, आप देख सकते हैं www.bk.o/rajyoga-center से आप हमारे कोई भी नजदीकी सेवा केंद्र का एड्रेस और फोन नंबर आपको मिल सकता है। और www.brahmakumaris.org where we are/center से आप इंटरनेशनली हमारे कोई भी सेंटर के बारे में आप जान सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन इसको और इसकी वैल्यू को जानने के लिए, मेडिटेशन का अनुभव करने के लिए आप हमारे सेंटर्स पे जरूर जाएं। और अगर जो भी भाई बहन इंटरेस्टेड हैं उनके लिए स्पिरिचुअल क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और उसके सभी के लिंक्स आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू एंड ओम शांति। ओवर टू यू मोनिका।
ओम शांति दीदी, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हमेशा की तरह, और कर्मों पे अगर अटेंशन हो तो टेंशन नहीं होगा। तो दीदी आज के प्रश्न, पहला प्रश्न आया है कि अकर्म में पाप कर सकते हैं?
अकर्म में पाप कर सकते हैं, अकर्म होते ही सत्ययुग और त्रेता युग में है, और सत्ययुग और त्रेता युग में हमारे अंदर इसको कहेंगे ना, पाप की समझ ही नहीं होती है कि पाप क्या होते हैं, तो अकर्म में पाप नहीं आएंगे, पाप ऑलरेडी ही विकर्म में है, पाप मतलब ही विकर्म है।
जी, अंजना जी का प्रश्न आया है, व्हाई लाइफ इज सो डिफिकल्ट?
अंजना जी, ऐसा नहीं है कि जीवन डिफिकल्ट है, कुछ सिचुएशंस जीवन में ऐसी आ जाती है कि हमें लगता है कि जीवन बहुत डिफिकल्ट है, परंतु बस उस सिचुएशन में ही हमें ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन, अध्यात्म, अपने को जानना, परमात्मा को जानना, उस सिचुएशन को ही हमें हैंडल करके आगे बढ़ना है। बाकी फिर से जीवन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है, हमें वी हैव टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, लाइफ का जो दूसरा साइड है हमें वहां पर भी देखना है। अगर हम जो डार्क साइड है उसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट ही लगेगा, लेकिन उस डार्क साइड को कुछ समय के लिए छोड़ करके और हम जो ब्राइट साइड है उस तरफ अपना ध्यान लगाएं और उसके ऊपर चिंतन करें तो डेफिनेटली लाइफ की जो ब्यूटी है वो भी दिखाई देगी।
जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ माई एक्शन इज अकाउंटेबल?
यस, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ अकाउंटेबल है, सबका हिसाब किताब चल रहा है, हमें रखने की जरूरत नहीं है, वो चल रहा है ऑटोमेटिकली। कहीं सुना था ना, जब छोटे थे तब कहीं सुनते थे कि हमारे पीछे एक चित्रगुप्त है, वो हमारा सारा दिन का रिकॉर्ड रख रहा है कि हमने कितना अच्छा किया, कितना गड़बड़ किया। तो वो हमारा हर कर्म अकाउंटेबल है, वी आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन वी आर डूइंग।
जी, एक और क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली फ्यू कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड वेयर एज लैक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड द सेम एफर्ट्स?
बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सीट्स, जो भी एग्जाम है ना, अभी कुछ दिन पहले कुछ डेटा किसी से सुन रहे थे, 10 लाख लोग, मे बी डेटा, आई डोंट नो, मैंने किसी से सुना है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, 10 लाख लोग हर साल यूपीएससी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, 4.5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं और सीट्स है सिर्फ अराउंड 1000 भी पूरी नहीं है, कुछ कम है, शायद 800 के अराउंड सीट्स हैं।
तो ऐसा नहीं है कि वो 4.5 लाख जो एग्जाम देने आए थे उन्होंने तैयारी नहीं करी थी क्या, ऐसा नहीं है। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेड रेंज है, सीट्स है सिलेक्टेड, इतनी ही वैकेंसी है, इतनी ही सीट्स है। आज इंजीनियरिंग मेडिकल बहुत सारी जगह की सीट्स लिमिटेड है, IITs की सीट्स लिमिटेड है, बच्चे लाखों एग्जाम देते हैं और सब पॉइंट्स में कोई 1-2 मार्क्स से आगे पीछे होता है, जितनी सीट्स है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। सो इफ वी विश टू गेट सिलेक्टेड तो लगता है थोड़ी और एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम उस छोटे से नंबर में पहुंच सकें।
जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ घटनाएं परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि भूले नहीं भूलती, कुछ भी ऐसा आसपास देखते हैं तो फ्रेश हो जाती हैं, क्या करें?
एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रैक्टिस है, वो करनी पड़ेगी। शिव बाबा के नाम पर एक पत्र लिख के सारी बातें उनके साथ शेयर करना, और एक बार नहीं ये पत्र कई बार लिखना है। अगर उस पूरी स्टोरी में हमारी भी जो गलती है उसके लिए बार बार उनसे सॉरी भी बोलना है, क्योंकि एक बार सॉरी बोलने से वो हटेगा नहीं। बार बार हमको अपनी तरफ से भी सॉरी भी करना है, बार बार उनके साथ शेयर भी करनी, क्योंकि बार बार यहाँ तो आ ही रही है ना, तो जब बार बार यहाँ आ रही है तो हम बार बार लिख भी तो सकते हैं ना उस बात को। बार बार ईश्वर के आगे उस बात को अर्पण करना है, बाबा आप संभालो, आप इसको रखो, मुझे आपके साथ जीवन जीना है। अपने साथ शिव बाबा को कंबाइंड रख करके हम उस सिचुएशन को आगे निकालें। अपनी गलती है उसके लिए क्षमा मांगे, हमें लगता है सामने वाले की गलती की वजह से मेरे लाइफ में ये हो रहा है, उनकी वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो बाबा से क्षमा मांगे और बाबा से कहे बाबा आप उन आत्माओं को भी क्षमा करें। ना क्षमा एक्चुअली हमें ही करना है, लेकिन हमें लग रहा है ना भी कि हम कमजोर हैं, है ना, हम नहीं कर पा रहे, उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, उनकी गलतियों को भूल नहीं पा रहे, तो हम बाबा को अपने साथ रख के उन्हें माफ कर भी दें और बाबा से माफी भी मांग लें। कुछ ही दिनों में इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा, वो सारी बातें बुद्धि से निकल जाएगी और हम अपने मन और बुद्धि को किसी पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल डायरेक्शन में ले जा पाएंगे।
जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जानना चाहती हूँ राजयोगा मेडिटेशन की पढ़ाई से मन ना लगने की समस्या का समाधान हो सकता है? प्लीज टेल मी, आई एम सो वरिड अबाउट माई फ्यूचर। ये निधि जी का क्वेश्चन है कानपुर से।
डेफिनेटली मन नहीं लगने की समस्या का तो समाधान हो ही सकता है, क्योंकि मन तो तब नहीं लगता है ना जबकि मन को पता नहीं है कि कहाँ लगना है। अभी तो हमारे मन को पता है कि कहाँ लगना है, कहाँ लगना है हमारे मन को, हमारे मन को पता है कि हमारे मन को स्व की सबसे पहचान में लगाना है, शिव बाबा के साथ कनेक्ट होने में लगाना है, उनके साथ रिश्ता जोड़ना है, रोज जो हम स्पिरिचुअल स्टडी करने वाले हैं वहां पर उस मन को लगाना है। तो वो जो अकेलापन है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे यूथ जो कि मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, उनका बहुत सबका ये कहना है कि हम पहले जीवन में ना बहुत अकेलापन फील करते थे, ऐसा लगता था किसके साथ कुछ शेयर करे, कोई है ही नहीं हमारा साथी, बहुत छोटी उम्र में अकेलापन फील होने लग गया था। लेकिन जैसे जैसे ये ज्ञान सुना, जैसे जैसे शिव बाबा के साथ में कनेक्शन और प्यार बढ़ता गया, वो जो अकेलापन था जीवन का, जो मन नहीं लग रहा था जीवन में, जो अकेले अकेले लोगों से कट कर रहना चाह रहे थे हम, वो सब धीरे धीरे ठीक हो गया, क्योंकि हमें जीवन का सच्चा साथी सच्चा दोस्त शिव बाबा मिल जाता है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप सब भी इस बात को अनुभव कर पाएंगे। तो डेफिनेटली निधि जी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राजयोग में है, बट 1 मंथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए।
जी दीदी, थैंक यू सो मच। और आज प्रश्न तो अभी और भी हैं, लेकिन समय का थोड़ा सी सीमा है इसलिए, और वैसे भी 30 तारीख को तो हम एक सेशन रख ही रहे हैं जिसमें सभी के प्रश्न लिए जाएंगे, तो प्लीज अपने प्रश्न जो है आप रखिए और जरूर भेजिए, और 30 तारीख को हम आपके सारे प्रश्न लेंगे, वो सेशन ही प्रश्नोत्तर का रहेगा। और कल का सेशन जो कि हमारा मेडिटेशन का यानी कि परमात्मा का अवतरण का रहेगा, तो इसलिए कल का सेशन भी समय से ज्वाइन करें और देखिए परमात्मा को देखा, जाना, सुना, समझा, अब एक्सपीरियंस करेंगे कब आए हैं, कैसे दिखते हैं, तो उनसे और अच्छा संबंध बनाएंगे, तो कल का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको उनसे और अच्छा संबंध, गहरा संबंध बनाने का एक मौका जो कि आपको मिस नहीं करना है। इसीलिए जरूर जुड़िए, सुनिए ध्यान से और हमारे जो क्वेश्चंस डे बाय डे हम जो भेजते हैं उनको भी सॉल्व कीजिए, सबमिट कीजिए। और थैंक यू सो मच दीदी आपका इतने अच्छे से सेशन लेने के लिए, कर्मा की तरफ ध्यान खिंचवाने के लिए। थैंक यू, आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए सेशन को सुनना है, समाना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति।
जीवन में